नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के डोडा और हरियाणा के कुरुक्षेत्र में रैलियां करेंगे। कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय दल भी प्रचार जोर शोर से कर रहे हैं। सरकार ने गेहूं की कीमत में बढ़ोतरी और जमाखोरी रोकने के लिए भंडारण की सीमा में संशोधन किया। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह नई दिल्ली में राजभाषा हीरक जयंती समारोह के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। असम मंत्रिमंडल ने व्यापार घोटाले से संबंधित जुड़े सभी मामलों की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंपने का फैसला किया। और चीन में एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट के अंतिम पूल मैच में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। समाचार प्रभात के साथ मैं लवली निगम। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में पहले चरण में 24 विधानसभा क्षेत्रों में इस महीने की 18 तारीख को मतदान होगा। प्रधानमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता नरेंद्र मोदी आज डोडा जिले में एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर भाजपा के प्रमुख प्रवक्ता सुनील सेठी ने कल जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पर कश्मीर में अलगाववाद और आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में शांति स्थापित की और विकास सुनिश्चित किया। उन्होंने कहा कि श्री मोदी के पास जम्मू कश्मीर को देश का सबसे विकसित क्षेत्र बनाने का विजन और रोडमैप है। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने कल दक्षिण कश्मीर के दुरू, कांजीगुंड और देवसर में 3 सार्वजनिक सभाओं को संबोधित किया। केंद्र शासित प्रदेश में 3 चरणों में मतदान हो रहा है। दूसरे चरण के लिए मतदान इसी महीने की 25 तारीख को और तीसरे चरण के लिए 1 अक्टूबर को होगा। विधानसभा चुनाव की विशेष चुनाव श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पुलवामा सीट की।
पुलवामा दक्षिण कश्मीर का एक प्रमुख चेहरे के रूप में मैदान में है। हालांकि इस सीट पर एक दिलचस्प मुकाबला होने वाला है, क्योंकि अवामी इतिहाद पार्टी, आम आदमी पार्टी और जमात इस्लामी द्वारा समर्थित कुछ स्वतंत्र उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में हैं। कुल 99,560 मतदाता चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे, जिनमें 49,425 पुरुष और 50,133 महिला मतदाता है। निर्वाचन आयोग ने इस सीट में सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाओं के साथ 112 मतदान केंद्र स्थापित किए हैं। 10 साल के लंबे अंतराल के बाद स्थानीय सरकार बनाने के लिए मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए काफी उत्साहित हैं। अन्य तैयारियों के अलावा सभी विधानसभा क्षेत्रों में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है, ताकि मतदाता किसी भी रुकावट के बगैर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं सुनील कोल।
हरियाणा में एक ही चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार भी जोर पकड़ रहा है। प्रधानमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता नरेंद्र मोदी आज राज्य में पार्टी के अभियान की शुरुआत करेंगे। श्री मोदी आज दोपहर को कुरुक्षेत्र के थीम पार्क में चुनावी रैली करेंगे। हरियाणा में प्रधानमंत्री की यह पहली चुनावी रैली होगी। राज्य की 90 सदस्यीय विधानसभा के लिए 5 अक्टूबर को मतदान होगा। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती अगले महीने की 8 तारीख को होगी। केंद्र सरकार ने गेहूं की कीमत में बढ़ोतरी और जमाखोरी को रोकने के लिए व्यापारियों, थोक विक्रेताओं, बड़ी श्रृंखला के खुदरा विक्रेताओं और प्रसंस्करण करने वालों के लिए भंडारण की सीमा संशोधित की है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के वक्तव्य में कहा गया है कि व्यापारियों और थोक विक्रेताओं के लिए संशोधित गेहूं भंडारण सीमा अब 2000 मीट्रिक टन होगी। ये सीमा पहले 3000 मीट्रिक टन थी। व्यक्तिगत खुदरा विक्रेताओं के लिए भंडारण सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि सभी गेहूं भंडारण से जुड़ी कंपनियों को गेहूं भंडारण सीमा पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा और प्रत्येक शुक्रवार को स्टॉक की स्थिति अपडेट करनी होगी। केंद्र सरकार ने बासमती चावल के निर्यात के लिए पंजीकरण सह आवंटन प्रमाण पत्र जारी करने के लिए $950 प्रति टन के न्यूनतम निर्यात मूल्य को हटा दिया है। केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में फैसले की सराहना करते हुए कहा कि उच्च गुणवत्ता वाले चावल के निर्यात से किसानों की कमाई बढ़ेगी। श्री गोयल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लिया गया यह फैसला किसानों के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है। सरकार ने कच्चे तेल पर 20% और परिष्कृत सूरजमुखी के तेल पर आज से 32.5% सीमा शुल्क बढ़ा दिया है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार कच्चा पॉम, सोयाबीन और सूरजमुखी तेल पर सीमा शुल्क 0 से 20% तक बढ़ा दिया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। हिंदी दिवस आज मनाया जा रहा है। 1949 में आज ही के दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में हिंदी को देश की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। एक रिपोर्ट।
निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटन न हिए के सूल। हिंदी भाषा साहित्य के पितामह कहे जाने वाले भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने खड़ी बोली यानी हिंदी की आम भाषा को लोगों तक पहुंचाने के लिए इन बातों को कहा था। आज हिंदी दिवस के अवसर पर इनकी कृतियों को याद करना हमें हिंदी के प्रति और सजग रहने की आवश्यकता पर बल देता है। आज समय के साथ हिंदी मजबूत होती जा रही है, यही कारण है कि अब सिर्फ भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी भी अपनी भाषा की अपेक्षा हिंदी को अधिक महत्व देते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का मानना था कि राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। हृदय की कोई भाषा नहीं है, हृदय हृदय से बातचीत करता है और हिंदी हृदय की भाषा है। वहीं महान कवि मैथिली शरण गुप्त का मानना था कि कहीं अकेला भी होऊंगा मैं तो भी सोच न लाऊंगा, अपनी भाषा में अपनों के गीत वहाँ भी गाऊंगा, मुझे एक संगिनी वहाँ भी अनायास मिल जाएगी, मेरा साथ प्रतिध्वनि देगी, कली कली खिल जाएगी। और इसलिए हिंदी के महत्व को समझते हुए 1949 में आज ही के दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में हिंदी को देश की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। हिंदी विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है और 52 करोड़ से अधिक लोगों की पहली भाषा है। इस अवसर पर आज जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से अमन यादव।
गृहमंत्री अमित शाह ने हिंदी दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सभी भारतीय भाषाएं देश का गौरव और विरासत हैं तथा इन्हें समृद्ध किए बिना प्रगति संभव नहीं है। श्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राजभाषा हीरक जयंती समारोह और चौथे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। राजभाषा विभाग हिंदी के राजभाषा बनने के 75 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इस अवसर पर श्री शाह राजभाषा भारती पत्रिका के हीरक जयंती विशेषांक का विमोचन करेंगे और राजभाषा गौरव और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार भी प्रदान करेंगे। असम में राज्य मंत्रिमंडल ने व्यापार घोटाले से जुड़े सभी मामले केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। ये मामले राज्य के कई पुलिस थानों में दर्ज किए गए हैं। मंत्रिमंडल ने भविष्य में ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए राज्य के गृह और वित्त विभाग को मानक संचालन प्रक्रिया का मसौदा तैयार करने का भी निर्देश दिया है। हाल ही में लोगों ने अवैध ऑनलाइन ट्रेडिंग घोटाले से जुड़े मामले में कई प्राथमिकी दर्ज कराई थीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जमशेदपुर में एक समारोह में झारखंड के लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पहली किस्त हस्तांतरित करेंगे। कल नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री राज्य में लगभग 20,000 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित करेंगे।
15 सितम्बर को प्रधानमंत्री जी 2 करोड़ नए घरों के आवंटन का शुभारम्भ करेंगे। झारखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत झारखंड के लगभग 20,000 लाभार्थियों को जमशेदपुर से स्वीकृति पत्रों का वितरण करेंगे।
इसके अलावा 5 करोड़ से ज्यादा रुपए एक क्लिक के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजे जाएंगे। उन्होंने कहा कि साथ ही 46,000 लाभार्थियों के नवनिर्मित घरों को गृह प्रवेश समारोह भी आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल झारखंड के जमशेदपुर में 6 वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इन रेलगाड़ियों को टाटानगर रेलवे स्टेशन पर समारोह के दौरान रवाना किया जाएगा। ये रेलगाड़ियां झारखंड को अन्य राज्यों से जोड़ेंगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में 7वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया। 2 दिवसीय सम्मेलन के दौरान सरकार राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और केंद्रीय पुलिस संगठनों के शीर्ष पुलिस नेतृत्व के साथ उभरती राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए एक रोडमैप की रूपरेखा तैयार करेंगी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में सेना के 2 जवान शहीद हो गए और 2 अन्य घायल हो गए। एक गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए सुरक्षा बलों ने किश्तवाड़ जिले के छत्रू बेल्ट में नेटगाम इलाके में संयुक्त घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया। ऑपरेशन के दौरान नेतगाम गांव के ऊपरी इलाके में पिंगनाल दुगड्डा वन क्षेत्र में सुरक्षा बलों और छिपे हुए आतंकवादियों के बीच गोलीबारी हुई, जिसमें 4 सैनिक गोली लगने से घायल हो गए। बाद में उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। इलाके में जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकवादी फंसे हुए हैं। तलाशी अभियान जारी है, ब्यौरे की प्रतीक्षा है। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट में भारत अपने 5वें और अंतिम पूल मैच में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से भिड़ेगा। मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 1:15 पर शुरू होगा। हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई वाली भारतीय टीम अब तक टूर्नामेंट में अजेय रही है। भारतीय टीम वर्तमान में 12 अंकों के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर है। उधर एथलेटिक्स में भारत के 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा आज देर रात बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में डायमंड लीग फाइनल 2024 के भाला फेंक में प्रतिस्पर्धा करेंगे। ये मैच भारतीय समयानुसार 1:52 पर शुरू होगा। डायमंड लीग में नीरज का मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड है। उन्होंने वर्ष 2022 में फाइनल जीता और 2023 में दूसरे स्थान पर रहे। 2024 में उन्होंने 2 मुकाबलों में 14 अंक अर्जित किए हैं और वे अंक तालिका में 4थे स्थान पर रहे। इस बीच अविनाश साबले डायमंड लीग फाइनल में पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपल चेज में 9वें स्थान पर रहे।
मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी के पूर्वोत्तर में बने दबाव के कारण पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, ओडिशा, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तराखंड में भी आज बहुत तेज बारिश की संभावना है। विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और बिहार में अगले 2-3 दिन के दौरान बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इस बीच मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आज बादल छाए रहने और मध्यम वर्षा की संभावना व्यक्त की है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों के सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
धन्यवाद लवलीन। आबकारी नीति घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कल सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत मिलने की खबर सभी अखबारों में है। दैनिक जागरण लिखता है केजरीवाल सरकारी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे जब तक एलजी की मंजूरी लेने को ऐसा करना जरूरी न हो। पहले वंदे मेट्रो गुजरात के भुज और अहमदाबाद के बीच चलेगी। देशभर में दौड़ेंगी 3000 ट्रेन, राजस्थान पत्रिका की खबर है। पत्र ने इसे सुहाना सफर शीर्षक से देते हुए लिखा है कि प्रधानमंत्री सोमवार को हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना करेंगे। राष्ट्रीय राजधानी में कल दिनभर हुई रुक रुक कर बारिश, अमर उजाला ने इसे सुर्खी दी है। मौसम ने ली अंगड़ाई, दिन में ही रात घिराई। उधर हिंदुस्तान का कहना है दिल्ली ने सबसे साफ हवा में सांस ली, आज भी तेज बारिश संभव। गैर घरेलू फर्नीचर को अब बनाना होगा फायर प्रूफ, राष्ट्रीय सहारा में है। पत्र के अनुसार जन सुरक्षा के लिए सरकार ने लिया फैसला, सार्वजनिक स्थानों पर फर्नीचर और साजो सामान के लिए बीआईएस मानदंड जरूरी। मंकी पॉक्स की पहली वैक्सीन को विश्व स्वास्थ्य संगठन की मिली मंजूरी शीर्षक से नवभारत टाइम्स ने संगठन के हवाले से लिखा है कि अफ्रीका और अन्य स्थानों पर इस बीमारी का मुकाबला करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। आज हिन्दी दिवस के अवसर पर राजस्थान पत्रिका ने पहले पन्ने पर खबर दी है हिंदी का बढ़ता सम्मान, रोजगार, शिक्षा और युवा पीढ़ी में बढ़ता प्रभाव। त्योहार के सीजन में मिलावट करने वालों की खैर नहीं, इस खबर को लगभग सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के डोडा और हरियाणा के कुरुक्षेत्र में रैलियां करेंगे। कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय दल भी प्रचार जोर शोर से कर रहे हैं। सरकार ने गेहूं की कीमत में बढ़ोतरी और जमाखोरी रोकने के लिए भंडारण की सीमा में संशोधन किया। देशभर में आज हिन्दी दिवस मनाया जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राजभाषा हीरक जयंती समारोह के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। असम मंत्रिमंडल ने व्यापार घोटाले से संबंधित जुड़े सभी मामलों की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंपने का फैसला किया। और चीन में एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी टूर्नामेंट के अंतिम पूल मैच में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।